दिन भर 27 दिसंबर शुक्रवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली मुंबई में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन।
हमारे देशभक्ति पे ये सत्ता सवाल उठा रही, बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही
है। हिंसक प्रदर्शनों के एक सप्ताह बाद क्या बोले पुरानी दिल्ली के लोग?
हमारी दिल्ली पुलिस है, ये हमारी सेवा करती है, रखवाली करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को चाहिए जो इनके भेष में आ रहे हैं, आ रहे बजरंग दल के लोग वर्दियां पहन पहन के, उन पर नजर रखी जाए।
जानेंगे विरोध प्रदर्शनों में मारे गए कर्नाटक के लोगों को मुआवजा क्यों देंगी ममता बनर्जी। साथ ही वर्षांत कार्यक्रमों की कड़ी में आज कहानी गजल गायक जगजीत सिंह की। लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। देश की राजधानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन्होंने इस कानून का विरोध किया। वहीं मुंबई के आज़ाद मैदान में भी कई छात्र और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से 21 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि NPR और NRC देश की गरीब जनता पर हमला है। उन्होंने इसे नोटबंदी की तरह गरीब जनता पर टैक्स बताया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनसंख्या रजिस्टर को टैक्स से जोड़ना बेतुका है, NPR के जरिए गरीबों की मदद की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर बहाल कर दी गई हैं। 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को हटाया गया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, तभी से पूरे इलाके में इंटरनेट पर भी पाबंदी कर दी गई थी। कुल 145 दिनों के बाद कारगिल से इंटरनेट पर लगी पाबंदियां हटाई गई हैं। पिछले महीने गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ इंटरनेट सेवाएँ दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। कजाकिस्तान में 100 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई बच्चे भी शामिल हैं। घटना की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। 95 यात्री और चालक दल के 5 सदस्यों के साथ यह विमान कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अल्माटी से देश की राजधानी नूर सुल्तान जा रहा था। कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री रोमन स्काइलर ने कहा है कि सरकार घायलों को हर संभव मदद पहुँचा रही है। मैं सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में वो खुद को अकेला महसूस ना करें। सरकार मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव मदद पहुंचाएगी। ये थे कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री रोमन स्काइलर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिक्विड पार्टी में उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाले चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। नेतन्याहू को 70% से अधिक वोट मिले, जिसके आधार पर उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी गिदोन सार को आसानी से हरा दिया। पार्टी के अनुसार इस वोटिंग में लिक्विड के 1,16,000 सदस्यों में से 49% सदस्यों ने वोट दिया। जीत के बाद नेतन्याहू ने पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। अब वक्त आ गया है कि हम सभी एकजुट हों और लिक्विड में मुझे मिली इस बड़ी जीत को हम आम चुनाव में भी दोहराएं। देश के अधिकतर लोग हमारा समर्थन करते हैं और वो मुझे इस सरकार का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं। ये थे इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के शब्द। इस्लामिक स्टेट समूह ने एक वीडियो जारी कर नाइजीरिया में 11 ईसाइयों की हत्या करने का दावा किया है। इस वीडियो में कुछ लोगों के सिर कलम करते हुए दिखाया गया है। 56 सेकंड का यह वीडियो IS की समाचार एजेंसी अमाक ने जारी किया है। मरने वालों की पहचान जारी नहीं की गई है, लेकिन वे सभी पुरुष थे। IS का कहना है कि उन्होंने इन लोगों को पिछले दिनों नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी बोर्नो राज्य से अपने कब्जे में लिया था। रूस का कहना है कि उन्होंने एक नई मिसाइल की खेप को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल किया है। यह मिसाइल आवाज़ की गति से 27 गुना तेज चल सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड युक्त इस मिसाइल की पहली खेप को दक्षिण पश्चिम रूस के ओरनबर्ग शहर के बाहरी इलाके में रखा गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल इस मिसाइल की तस्वीरें जारी करते हुए कहा था कि यह मौजूदा वक्त में किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। BBC समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं।
हमारे देशभक्ति पे ये सत्ता सवाल उठा रही, बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन
रहा। ये गीत नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में गाए जा रहे हैं। पिछले शुक्रवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए आज प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों की कोई घोषणा नहीं हुई थी, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस को आशंका थी कि शुक्रवार होने के कारण मस्जिदों में नमाज के बाद कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच पिछले हफ्ते हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों का दौर जारी है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पिछले हफ्ते जुमे के बाद कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसकी वजह से पुलिस पहले से ही सतर्क थी। हिंसा की आशंका वाली जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। करीब 2 दर्जन जिलों में रात से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और पिछले हफ्ते हुई हिंसा के सिलसिले में धरपकड़ जारी थी। राज्य के DGP OP सिंह का कहना था,
पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से पूरी शांति है और लॉ एंड ऑर्डर काफी मेंटेन्ड है, लेकिन फिर भी हमने स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट अपनी फोर्स का कर रखा है। हम स्ट्रांग मॉनिटरिंग कर रहे हैं लोगों की एक्टिविटीज को, खासकर सोशल मीडिया पे हमने काफी नजर रखी है और यही कारण है कि लगभग 21-22 स्थानों पर हमने इंटरनेट की सेवाएं टेम्पररली बाधित कर दी हैं।
शुक्रवार को एहतियातन राज्य में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए हैं और जगह जगह ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी भी की जा रही है। विभिन्न जगहों पर पिछले 2 दिनों से शांति बहाली की कोशिशें की जा रही थी और नागरिकता कानून के बारे में पुलिस सच्चाई बताने की कोशिशें भी कर रही है। मेरठ में गुरुवार को रात भर पुलिस संवेदनशील इलाकों में इस बारे में लोगों को समझाती रही और शहर में अमन चैन बनाए रखने की अपील करती रही। पिछले शुक्रवार को कानपुर में कई जगह हिंसा भड़की और 3 दिन तक जारी रही, इसलिए वहां विशेष सतर्कता बरती गई। हालांकि हिंसा के बाद हुई पुलिस कार्रवाई से लोगों में गुस्सा भी था, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने अपनी कार्यशैली में भी कुछ बदलाव लाया, जिससे स्थितियां शांत बनी हुई हैं। कानपुर में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण मोहता बताते हैं,
पुलिस ने शुरुआत में 3-4 दिन में गिरफ्तारियां की, उसके बाद AGP और अन्य लेवल के जो आदेश आए थे कि किसी भी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, उसका एक बड़ा असर ये था कि पुलिस ने कई ऐसे लोगों को रिहा करा जो पुलिस कस्टडी में थे, तो उसने सकारात्मक असर किया। लोग नहीं चाहते थे कि रात में अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके घरों के आसपास पुलिस आए, शोर मचाए, तमाशा करे। पुलिस ने आश्वासन दिया। DM ने भी कल शाम को मेरी SSP से अनंत देव से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी अपराधी को रात में गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम घनी आबादी के क्षेत्र में दिन में जाएंगे। और ये बातें जब मीडिया के जरिए प्रसारित हुई तो इसने लोगों की सोच पर सकारात्मक असर डाला, उन्होंने ज्यादा सुरक्षित महसूस करा और आज चीजें कहीं ज्यादा बेहतर दिखी।
इस बीच पिछले हफ्ते हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 500 लोगों को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेजा है। सबसे ज्यादा 200 लोगों को मुरादाबाद में नोटिस दिया गया है। इस बीच हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
आज दिल्ली, मुंबई और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, लेकिन साथ ही सुरक्षा चाक चौबंद थी। वहीं मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए।
देश के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में और सबके हित में, देश के हित में।
दिल्ली के जामा मस्जिद के अलावा यूपी भवन के बाहर आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आज जामा मस्जिद और यूपी भवन के बाहर BBC संवाददाता सलमान रावी मौजूद रहे। मैंने उनसे बात की।
पिछले जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी जामा मस्जिद पे, लेकिन ठीक उसके उल्टा इस बार जो है, चूंकि पहले से ही मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया था और जो भी सामाजिक लोग थे उन लोगों ने पहल की थी कि विरोध सिंबॉलिक हो और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इस पर ध्यान दिया गया था और इसी वजह से लोग कम वहाँ जमा भी हुए थे। और चूंकि चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जामा मस्जिद मालका लामा भी पहुंच गई और शोएब इकबाल जो फॉर्मर MLA हैं वो भी मौजूद थे और एक सभा को उन्होंने भी संबोधित किया और बाद में BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा,
हम अपना प्रोटेस्ट हमारा वो जारी रखें और हम लोग इस तरह के प्रोटेस्ट बिल्कुल आगे भी जारी रखेंगे, मैं इतना कह दूं कि आज दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और ये होते रहेंगे कि जब तक एनआरसी का जो ये अपने इन्होंने शगुफा छोड़ा है, ये शगुफों को खत्म नहीं कर देते तब तक ये हमारा चलता रहेगा।
लेकिन पिछली बार जब यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था उस टाइम में ये अचानक हिंसक क्यों हो गया?
पता नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, जब उधर एक दफा चल लिया था, एक बजे से हुआ, लेकिन थोड़ा सा शाम को किसने कर दिया उसका मुझे पता ही नहीं लग रहा कि किसने करा, आज तक नहीं पता लगा कि कौन है। इंक्वायरी चल रही है, उसमें पता लग जाएगा।
लेकिन जाम मस्जिद के इलाके में तो कभी इस तरह की बात हरकतें होती नहीं थी पहले, बहुत सालों से
नहीं होती। मैं
लेकिन ये अचानक क्यों हुआ फिर?
5 बार से एमएलए हूं, आज तक तो किसी को पत्थर भी नहीं लगाए, आज तक पत्थर नहीं लगाए तो किसने कराए? और ना यहाँ इंसा हुई है, वो दरियागंज में जाके हुई है।
ये थे शोएब इकबाल। और आम नागरिक क्या सोचता है जामा मस्जिद का, ये भी मैंने टटोलने की कोशिश की, लोगों से बात की जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे।
हमारी दिल्ली पुलिस है, ये हमारी सेवा करती है, रखवाली करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को चाहिए जो इनके भेस में आ रहे हैं, आ रहे से बजरंग दल के लोग वर्दियां पहन पहन के, उन पर नजर रखी जाए।
आप कुछ कहना चाहते हैं?
सर देखिए, जो भी अभी ये बिल लेके आए हैं, हमारे प्रीएम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर ये इस बिल को लेके आए रिलीजियस बेस के ऊपर, अब ये जो भी बिल लेके आएंगे इन फ्यूचर में, तो ये बिल बेस बन सकता है कि देखो हमने पुराने टाइम रिलीजियस बेस के ऊपर एक एक्ट का अमेंड किया, तो अब फर्दर हम रिलीजियस बेस के ऊपर इस बिल को अमेंड कर सकते हैं, जो हमारी सेक्युलरिज्म है हमारे देश को उसे तोड़ता है कहीं ना कहीं।
ये तो थी आवाजें जो आपने सुनी स्थानीय नागरिकों की जामा मस्जिद के इलाके से। उसके बाद फिर मैं गया यूपी भवन, जहां पर करबला मैदान से लेकर यूपी भवन तक एक जुलूस निकाला था छात्र छात्राओं ने, और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जो छात्र संगठन हैं उनके लोग थे। इस प्रदर्शन में ज़्यादातर जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू के छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, और यूपी भवन वो इसलिए कूच कर रहे थे। मैंने बात की उन लोगों से जिनको डिटेन किया गया, क्योंकि आपको पता है कि धारा 144 पहले ही लगा दी गई थी और कई जगहों पर दिल्ली में भी इंटरनेट जो है वो बंद था या नहीं के बराबर था। उनमें से यूपी भवन भी एक था जहां से जब जैसे जैसे पैदल पैदल लड़के लड़कियां जो छात्र छात्राएं सब आ रहे थे, उनको पकड़ पकड़ करके बसों में भर के गिरफ्तार करके फिर पार्लियामेंट हाउस का जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का पुलिस स्टेशन है वहां ले जाया गया। लेकिन जो आशंकाएं थी कि हिंसा होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट किया लोगों ने और वो शाम होते होते तक फिर वो ठंडा भी पड़ गया।
दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, अधिक जानकारी दे रहे थे सलमान रावी। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी टीएमसी कर्नाटक के मंगलुरु में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
लगता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देना न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि कर्नाटका में भी देना शुरू कर दिया है। कल ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा,
बीजेपी नेता
कर्नाटका बीजेपी ने कहा है कि उनके पास पीड़ित परिवारों को देने के लिए पैसा नहीं है। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी गरीब है लेकिन जनता के बहुत करीब रहती है। हम हमेशा लोगों के करीब रहते हैं, इसीलिए हमारी पार्टी के ट्रेड यूनियन विंग से एक शिक्षित मंडल उन परिवारों को राहत देने के लिए मंगलुरु जाएगा। ये थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द। आपको याद दिला दें कि 19 दिसंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में कर्नाटक के तटीय मंगलुरु में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने दूसरे दिन ही 10 लाख रुपयों के मुआवजे का ऐलान कर दिया था, लेकिन मंगलुरु पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें वीडियो मिले हैं जिसमें मरे हुए पुरुष प्रदर्शनकारी थे। इसके फौरन बाद मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने कहा था कि सरकार के पास से एक पैसा तब तक उनके परिवारों को नहीं दिया जाएगा जब तक जांच में वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते। इसके बाद ममता बनर्जी का बयान आया जिस पर अब बीजेपी के नेता ने बंगाल के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया है। कर्नाटका के पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने बीबीसी को बताया, ममता बनर्जी हमेशा राजनीति में लिप्त रहते हैं। जब वो विपक्ष में थी तो वो खुद एनआरसी और नागरिकता कानून में बदलाव मांगती थी। वो कभी भी अपना राजनीतिक रंग बदल देती हैं। वो राज्य या देश के हित में बात नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपने राजनीति के लिए बयान देती हैं। ये थे सीटी रवि के शब्द। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बयानबाजी से ममता बनर्जी कर्नाटक आकर राजनीति नहीं करना चाहती हैं, बल्कि उनकी नज़र सिर्फ पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की राजनीति पर है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
बीबीसी इंडिया बोल।
थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों की आलोचना की है, पर क्या राजनीतिक मुद्दों पर बयान देकर सेना प्रमुख ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है? बीबीसी इंडिया बोल में इस बार होगी चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 28 दिसंबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कॉल करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
इंडिया बोल में जरूर भाग लें और बढ़ते हैं आगे। जिन दिनों रॉक एंड रोल और लता, रफी, किशोर और मुकेश की दिलकश आवाजें पूरे भारत में धूम मचाई हुई थीं, उन दिनों राजस्थान के एक कस्बे से मुंबई आए एक नौजवान ने अपनी मखमली आवाज से गजलों की दुनिया को संवारने का बीड़ा उठाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की। वर्षांत कार्यक्रमों की दूसरी कड़ी में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीतमय जीवन पर।
सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता, निकलता
जगजीत सिंह के बारे में एक कहानी मशहूर है कि जब वो जालंधर के डीएवी कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हॉस्टल में रहने वाले छात्र उनके बगल के कमरे में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जगजीत सुबह 5 बजे उठकर ही 2 घंटे का रियाज शुरू कर देते थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ऑल इंडिया रेडियो के जालंधर स्टेशन पर जगजीत सिंह को उपशास्त्रीय गायन की शैली में फेल कर दिया गया था, जबकि शास्त्रीय शैली गायन में उन्हें बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। एक बार जगजीत सिंह और मशहूर निर्देशक सुभाष खई एक अंतर्राज्यीय उत्सव में भाग लेने बैंगलोर गए थे। जगजीत सिंह पर किताब लिखने वाली सत्या सरन बताती हैं।
खई साहब आते थे ड्रामेटिक्स में और जगजीत जी जाते थे क्लासिकल म्यूजिक में, तो बैंगलोर गए थे और दोनों साथ में थे अपने अपने कॉलेजेस के लिए। तो अनाउंस किया गया कि अभी जगजीत सिंह आएंगे और वो क्लासिकल गाएंगे, और जब वो ऑडियंस में देखा, वो सरदार थे तब, तो पगड़ी वगड़ी बांध के जब आए तो ऑडियंस हंसने लगे कि ये तो भांगड़ा गाना चाहिए इसको, ये क्या क्लासिकल गा रहा है। घाई साहब कहते हैं कि उन्होंने ही वॉज नॉट एट ऑल परटर्ब्ड, वो बस आंख बंद करके आलाप गाते रहे और ऑडियंस चुप हो गई, और फिर उन्होंने अपना सुर लगाया और ही स्टार्टेड सिंगिंग द क्लासिकल रागा, और बिल्कुल ऑडियंस चुप रही, और उसके बाद तालियां जो बजने लगी तो 5-5 मिनट में तालियां बजने लगी, और घाई साहब बोलते कि मेरे आंख में तो आंसू भर आए।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
इस सफर की शुरुआत राजस्थान के छोटे से शहर श्री गंगानगर में हुई थी। जगजीत ने पहले पंडित छगनलाल शर्मा से सीखा और बाद में जमाल खां उनके उस्ताद बने। जगजीत के छोटे भाई करतार सिंह याद करते।
फादर को हमारे बहुत शौक था संगीत का, कुछ परिवार के हालात ऐसे थे कि वो संगीत सीख नहीं पाए थे, उनके मन में ये बात थी कि मैं अपने किसी ना किसी बच्चे को पूरी तरह ट्रेन करूँ म्यूजिक में। तो जब हालात कुछ बेहतर हुए तो उन्होंने भाई साहब को चुना, काफी स्ट्रगल के बाद एक उस्ताद जी को चुना गया। तो उन्होंने अपनी शर्त रखी कि भाई मैं तो पहले लड़के की आवाज़ सुनूंगा, अच्छा लगा तो ज़रूर सिखाऊंगा। मीटिंग फिक्स हुई, गाना सुनाया गया, उस्ताद जी को पसंद आया, उस्ताद जमाल खान साहब जयपुर घराने के। उसके बाद फादर ने पूछा कि आपकी फ़ीस क्या होगी, तो कह रहे फीस कुछ नहीं, मुझे रोज़ एक बोतल शराब चाहिए। हमारे फादर तो इतना पीते थे ना, कुछ नॉनवेज खाते थे, तो एक जानने वाले थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि भाई आपने रोज़ एक बोतल शराब पैदा करनी है।
1965 में जगजीत सिंह मुंबई पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात उभर रही गायिका चित्रा सिंह से हुई। उस समय वो शादीशुदा थीं और उनकी एक बेटी भी थी। चित्रा के साथ उनकी दोस्ती बढ़ी और दोनों ने साथ गाना शुरू कर दिया। जगजीत ने ही चित्रा को सुर साधने, उच्चारण और आरोह अवरोह की कला सिखाई।
मैं उनसे सीख नहीं रही थी, वो हमारे दोस्त बन गए थे और हम उनके गाने, उनकी आवाज, उनके कंपोजिशंस मेनली बहुत अप्रिशिएट करने। मुझे एक्चुअली आई एम फ्रॉम बंगाल, तो मुझे उर्दू के साथ कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं था नाता, तो इनके गाने के थ्रू में आई स्टार्टेड लिसनिंग टू, उसके पहले तो तलत महमूद को सुनते थे, वो भी सुनते थे तलत महमूद को, गाने तो मुझे आता था गाना, लेकिन उनके कंपोजिशन गाना और वैसे गाना गाना जमीन आसमान का फर्क है। वो बाद में भी हमने और आर्टिस्टों के थ्रू में भी देखा कि आप मोहम्मद रफी को कॉपी कर लोगे, बन्ना डे को कॉपी कर लोगे, मुकेश को कॉपी कर लोगे, लेकिन जगजीत सिंह को कॉपी करना इज इम्पॉसिबल। उस वक्त जो हमने उनके गाने गाने के लिए जब बैठे, तो वो जो करेक्शन कराते थे मुझे, दैट यूज्ड टू बी माय ट्रेनिंग विद हिम, तो मैं समझ के फिर गाना शुरू करती थी। उन्होंने मेरी आवाज की जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता था उसको समझ के उन्होंने मेरे लायक कंपोजिशन बनाना शुरू किया।
चित्रा की आवाज महीन और ऊंचे स्वर वाली थी, जबकि जगजीत की आवाज भारी थी। वो किसी गाने को आगे बढ़ा सकते थे और जरूरत पड़ने पर उसे 40-45 मिनट तक खींच भी सकते थे, जबकि चित्रा ऐसा नहीं कर पाती थी।
हमारे दोनों की जो आवाजें थी वो कैरेक्टरिस्टिकली दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट, तो उनकी कंपोजिशंस जो वो करते थे, ही यूज्ड टू डू इट सो स्मार्टली कि ऊंची लाइनें या अंतरा का जो कंपोजिशन वो करते थे, जो मेरे लिए छोड़ देते थे, दोज यूज्ड टू बी ऊंचे सुर में, और जो नीचे के सुर थे वो गाते थे। तो आई थिंक ये जो एक कॉम्बिनेशन हमारी आवाज की थी विद अ टोटल कॉन्ट्रास्ट, दैट इज व्हाट अपील्स टू पीपल। जोड़ियों में गाना उन दिनों होता ही नहीं था। आई थिंक वी वर प्रोबेबली इफ नॉट द वेरी फर्स्ट बट फर्स्ट सक्सेसफुल जोड़ी, जो कि पढ़े लिखे भी थे और गाने जो थे ऐसे ही था, मिसमैच्ड आवाज।
जिस रिकॉर्ड ने उनकी पहचान पहली बार बनाई वो था अनफॉरगेटेबल्स। उस वर्ष ये रिकॉर्ड किसी भी फिल्मी रिकॉर्ड से ज्यादा बिका।
76 में हमारा पहला LP जो है लॉन्ग प्ले द अनफॉरगेटेबल्स वो रिलीज हुआ, तो वो हमारी सबसे बड़ी फर्स्ट माइलस्टोन कहना चाहिए उसको, जो अभी तक पॉपुलर है, उसकी गजलें भी पॉपुलर हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी उसमें है, और बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं।
सोनासी में उनका रिकॉर्ड कम अलाइव आया, इसमें कई चीजें नई थी, मसलन कॉन्सर्ट की लाइव रिकॉर्डिंग, गजल सुनाते सुनाते जगजीत की सुनने वालों से बातचीत और बीच बीच में चुटकुले। जगजीत सिंह के छोटे भाई करतार सिंह याद करते हैं,
मैंने जब भी उनसे बात करी कि आप जोक को सुनाते हो स्टेज पे, तो कह रहे यार कनेक्ट करना होता है ऑडियंस के साथ, अब हैवी गजल सुनाने के बाद सबके सब रोने लग जाए महफिल में या ऑडियंस में, उसके बाद उनको वापस उसी मोल्ड में लाना है, तो एक आध जोक हो जाए बीच में, एक लाइट गजल हो जाए, तो ये सारा जो ऑडियंस के साथ उनकी केमिस्ट्री थी, जो रेपो बनाते थे, जो कनेक्ट होता था, ये उसका एक हिस्सा था।
गम नहीं, शराब नहीं।
उसके बाद आया गुलजार का टेलीविजन पर मिर्जा गालिब सीरियल। गुलजार ने संगीत और गाने की जिम्मेदारी जगजीत सिंह पर छोड़ी। जगजीत के सामने चुनौती थी कि तलत से लेकर लता, बेगम अख्तर, मेहंदी हसन और सुरैया तक ने खालिब को गाया था, उनको उन सब से अलग होना था। जगजीत ने इस एल्बम के साथ इतिहास रच दिया।
गुलजार और जगजीत दोनों जीनियस टाइप पीपल हैं। दे आर अनपैरेलल्ड इन देयर फील्ड्स, बट थोड़ा सा कंपटीशन भी है उनमें। तो ये बात रही कि एज क्रिएटिव आर्टिस्ट उनमें एक सिनर्जी थी, एक दूसरे को बढ़ाते जाते थे। बट जगजीत के साथ उनका बहुत ही टक्कर होने लगा, क्योंकि गुलजार इज वेरी स्ट्रिक्ट। ही सेड अगर आप म्यूजिक बनाओगे तो उसमें वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे जो उस समय यूज किए जाते थे। और जगजीत ने कहा क्या करूं, कैसे बनाऊं। पर ये देखिए कि दोनों की क्रिएटिव एनर्जीज इतने स्ट्रांग थे कि वो जो म्यूजिक है वो मेरे ख्याल से जगजीत जी के सबसे बढ़िया म्यूजिक है।
एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
1999 में जब जगजीत पाकिस्तान गए तो राष्ट्रपति मुशर्रफ के घर भी गए, जहां दोनों ने साथ साथ पंजाबी गीत गाए और मुशर्रफ ने उनके साथ तबला भी बजाया। उसी ट्रिप में जब वो PIA के विमान से वापस दिल्ली आ रहे थे तो पायलट ने विमान की लैंडिंग में देरी कर दी।
जैसा ही मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे उनको पता चला क्रू को कि जिगी साहब हैं फ्लाइट में, तो उनकी कंपनी को और प्रोलोंग करने के लिए उन्होंने कुछ नीचे कांटेक्ट करा कंट्रोल को कि ऐसे ऐसे है कुछ हमारे साथ एक VIP हैं तो हम थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लेंगे, तो ऐसे कुछ फ्लाइट को उन्होंने डिले कर दिया थोड़ा सा। बहुत प्रॉब्लम थे पाकिस्तान में।
जगजीत अपने साजिंदों के आराम और सम्मान का बहुत ध्यान रखते थे। सत्या सरन एक किस्सा सुनाती है।
समन स्तू जो उनके फेवरेट रिकॉर्डिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक बार उनके साथ जब टूर पे गए थे तो उन्होंने पूछा कि तुम चाय पीते हो कि क्या पीते हो सुबह। समन ने कहा हाँ मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ। तो उठने से पहले जगजीत उठ के चाय बना के उनके सामने खड़े हो गए कि लो चाय पी लो उठो। और उनके और भी आदतें थे, जैसे वो अपना एक ड्रिंक पसंद करते थे, पर शायद वो ऑर्गेनाइजर सोचते थे कि सबके सामने अगर ये बैठ के ड्रिंक करे तो पता नहीं क्या होगा, तो वो स्टील ग्लास में रम पीते थे। सिगरेट का बहुत शौक था और वो भी उनको छोड़ना पड़ा बाद में।
एक बार BBC ने जगजीत सिंह से पूछा था कि संगीत के अलावा आपका दूसरा सबसे बड़ा शौक कौन सा है।
म्यूजिक के अलावा आई एम ए गैम्बलर, बॉर्न गैम्बलर। आई गैम्बल, आई ओन हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस हैं मेरे 5-6, तो गैम्बल इज इन माय ब्लड।
लेकिन घुड़दौड़ के शौक की वजह से एक बार उनकी आवाज बुरी तरह बैठ गई।
उनका घोड़ा जो था वो जीतने से लगा हुआ था, तो वो चिल्लाते गए और गई उनकी आवाज उसके बाद। तो मेरे ख्याल से 6 महीने उनको काफी तकलीफ हुई उसके बाद, और लता जी ने उनको हेल्प किया।
जावेद अख्तर ने उनके बारे में कहा था कि वो गजल गायकी में भारतीय उपमहाद्वीप के आखिरी स्तंभ थे। पहली बार मैंने उनको अमिताभ बच्चन के घर पर सुना था। उस LP की पहली ही नज्म थी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो।
बात निकली और वाकई दूर तलक गई। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
वर्षांत कार्यक्रमों की कड़ी में रेहान फजल की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
BBC समाचार। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। राहुल गांधी ने NPR और NRC को गरीब जनता पर हमला बताया। सरकार ने राहुल गांधी के बयान को बेतुका बताया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर बहाल कर दी गई हैं। कुल 145 दिन के बाद लद्दाख में इंटरनेट से पाबंदी हटी है। कजाकिस्तान में 100 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, मृतकों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लिक्विड पार्टी में उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाले चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। इस्लामिक स्टेट समूह ने एक वीडियो जारी कर नाइजीरिया में 11 ईसाइयों की हत्या करने का दावा किया है। इस वीडियो में कुछ लोगों के सिर कलम करते हुए दिखाया गया है। रूस का कहना है कि उन्होंने एक नई मिसाइल की खेप को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल किया है। यह मिसाइल आवाज की गति से 27 गुना तेज चल सकती है। बीबीसी समाचार।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। कल शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में जरूर भाग लें। तब तक देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए आपके साथ है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। सभी साथियों के साथ मोहम्मद शाहिद को दें इजाजत। नमस्कार।